आज जो सब्जेक्ट हम लेकर आए हैं वो है साइकोलॉजी और हम बात करेंगे संवेदी प्रक्रियाएं अवधान और प्रत्यक्षीकरण। आपको बता दें कि इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर उदयना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
थैंक यू मैम। नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम लोग बात कर रहे हैं लेसन नंबर 5 की, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा करी थी संवेदी प्रक्रियाएं अवधान और प्रत्यक्षीकरण, सेंसरी प्रोसेसेस, अटेंशन एंड परसेप्शन। पिछली चर्चा में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो संवेदी प्रक्रियाएं, मतलब कि किस तरह से संवेदनाएं सेंसरी रिसेप्टर संवेदी संग्राहक से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और फिर मस्तिष्क से वो किस तरह से हमारे जो मांसपेशियां हैं या जो हमारा शरीर है उस तक पहुंचती हैं और हम लोग जो वर्कआउट करते हैं। हम लोग इसमें जो हमारी इंद्रियां थी और जो हमारे स्टिमुलस थे, जो पर्टिकुलर संवेदना थी उस पर्टिकुलर इंद्री के साथ, इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी जो है वो पिछले चर्चा में कर चुके हैं। अभी जो बात है कि जो हमारी संवेदी प्रक्रियाएं हैं वो किस तरह से आधार बनती हैं हमारे परसेप्शन के लिए और हम अपनी जो संवेदी प्रक्रियाएं हैं उनको किस तरह से जो है वो और अच्छा कर सकते हैं। तो अटेंशन, जिसे हम कहते हैं अवधान, तो आज हम लोग स्पेशली जो बात करेंगे वो परसेप्शन और अवधान पे बात करेंगे, परसेप्शन एंड अटेंशन पे, प्रत्यक्षीकरण और अवधान पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं प्रत्यक्षीकरण पे। प्रत्यक्षीकरण होता क्या है? जब हम प्रत्यक्षीकरण की बात कर रहे हैं तो प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि हम संवेदनाओं को अर्थपूर्ण प्रतिमान में कैसे उसे उपयोग कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि कई बार हम लोग देखते हैं, आपने भी पढ़ा होगा कि ये नजरिया है, अपना अपना परसेप्शन है। परसेप्शन मीन्स बोध, किसी चीज को समझने की अपनी कल्पना शक्ति। तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि हम लोगों ने जो स्टिमुलस हम ले रहे हैं उस स्टिमुलस का हमारे जो पूर्व ज्ञान है उसके साथ क्या संबंध है। और जो हमारा मस्तिष्क है या जो हमारी ग्रंथियां हैं, जो हमारा सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, वो जब किसी भी स्टिमुलस को लेते हैं तो मस्तिष्क जो है वो सक्रिय हो जाता है। और वो सक्रिय, वो जो हमारा मोटर सिस्टम है जो आपका, उसके द्वारा जो है वो मस्तिष्क तक पहुंचता है। अब जो मस्तिष्क है आपका सेंसरी सिस्टम के द्वारा जब वहां पहुंचा तो वो जो भी स्टिमुलस है उस चीज को एक सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से उसे रखता है। और जो संवेदी जानकारियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आंख से देखते हैं तो हमें कलर, उसकी शेप, वो अच्छा बुरा ये समझ में आता है। स्मेल से हमें खुशबू बदबू ये समझ में आती है। टच से हमें गुड टच, बैड टच, सॉफ्ट टच, हार्ड टच ये समझ में आता है। कान से हम मधुर या शोर ये समझ पाते हैं। तो बहुत सारी संवेदनी प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी पिछली चर्चा में कर चुके हैं। तो वो जानकारी जब एकत्र कर लेती है तो एक चित्र उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कि आप जब छोटे बच्चे रहे होंगे, बहुत छोटे बच्चे रहे होंगे, तो आप किसी अजनबी से मिले होंगे, तो जब कभी आप अजनबी से मिले होंगे तो आपको क्या लगा होगा? अगर आप मेल कैंडिडेट से मिले होंगे तो आपको लगा होगा कि जैसे मेरे ब्रदर हैं, जैसे मेरा पापा है, जैसे मेरे चाचा हैं, ये वैसे ही हैं। तो शायद आप उनसे उतने ही स्नेह से मिले होंगे, मगर हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा नहीं रहा, उन्होंने आपसे उस तरह से अच्छे से बात नहीं करी, आपसे रूड बिहेव करी, या फीमेल है तो आपको उनसे मदर लुक जैसा समझ में आया हो। हो सकता है उस लेडी ने आपको और भी ज्यादा ममता के साथ बात करी हो। तो वो एक्सपीरियंस जब आपका एक बार हुआ तो उसने आपके ऊपर कोई छाप छोड़ी। आपकी जो संवेदिक रिसेप्टर्स है, जो संवाहक है, जो सेंसरी सिस्टम है, उसने मस्तिष्क पर एक जो है वो परसेप्शन, मतलब एक छाप छोड़ दी और वो छाप आपके मन में कहीं बैठ गई। दूसरी बार, चाहे वो 2 महीने में 6 महीने में, दूसरे दिन कभी भी आपका फिर से इसी तरह का रेपिटेशन हुआ और अगर उसमें फिर से वही प्रोसेस रिपीट होता है तो जो पिछली छाप थी वो अब की बार जो है उसमें और ज्यादा स्ट्रेंथ हो गई कि लोग ऐसे होते हैं।
तो धीरे धीरे अगर आपको बहुत सारे लोगों से डिच होना पड़ा या बहुत सारे लोगों ने आपसे अच्छे से बात नहीं करी, तो आपके मन में जो एक बोध बन गया, जो एक परसेप्शन बन गया, वो ये बन गया कि सब लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। या कई बार क्या होता है कि आपने एक से बात करी, उसने आपकी बात आगे कर दी, तो दूसरे से बात करी, उसने भी आपकी बात आगे कर दी, तो आपके मन में एक परसेप्शन बन गया कि लोग जो हैं वो बात को अपने तक डाइजेस्ट नहीं करते हैं। तो ये परसेप्शन किस वजह से, जो हमारे संवेदी संवाहक थे सेंसरी सिस्टम से, जब उन्होंने उसको मस्तिष्क तक पहुंचाया और वो चीज जब रिपीट हुई बार बार, हमारे तजुर्बे जो है वो रिपीट हुए, तो उसकी वजह से वो हमारा परसेप्शन वहां पे बन गया। जो परसेप्शन होते हैं कुछ जन्मजात भी होते हैं। हमने बात करी थी कि कुछ चीजें जो हेरिडिटरी होती हैं, कुछ चीजें जो इन्वायरमेंटल होती हैं। तो कुछ प्रत्यक्षीकरण तो जन्मजात होते हैं जो कि हम बाय बर्थ लेके आते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो पूर्व अनुमानों के परिणाम स्वरूप होते हैं, मतलब कि वही जो हमारे पहले के एक्सपीरियंसेस है। और सम हाउ सम टाइम्स जो बड़े लोग होते हैं, जो उनके अपने परसेप्शंस होते हैं कुछ एक चीजों को लेके, आपने कई बार अपने माता पिता को कहते सुना होगा कि हमें आपसे बहुत ज्यादा तजुर्बा है, तो कुछ बातें हमारी मान लो, हम भी अपने बच्चों से बात कहते हैं कि हमारी उम्र बड़ी है तो जो हमने सीखा है, जो हमें पता है, वो आप हमसे ग्रहण कर लो, ताकि आपको वो चीजें, वो तकलीफ न झेलनी पड़े जो उस परसेप्शन को समझने के लिए हमको झेलनी पड़ी। संवेदना एक अवस्था है जिसमें तंत्रिकाएं क्रियाएं होती हैं, हम पहले भी बात कर सके हैं, और एक स्टिमुलस होता है। जो स्टिमुलस है उसकी जो नेचर है उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, अपना जो मोटर सिस्टम है उसके द्वारा। वो मोटर सिस्टम जो है वो स्टिमुलस की जानकारी जो है मस्तिष्क तक पहुंचाता है, मस्तिष्क जो है उसका जो भी उस वे क्रिया करता है, उस क्रिया के करने के बाद उसे क्रमबद्ध करके जो भी उसका रिजल्ट है, तो वो बॉडी में इतनी सारी मांसपेशियां हैं उसे कहां पहुंचाना है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको चोट लगती है, तो आप अपना हाथ एकदम से कहां रखते हैं, जहां पे चोट लगी है, कैसे कैसे पता लगा कि हाथ को वहां जाना है। वो जैसे ही पीड़ा हुई, पीड़ा ने एक स्टिमुलस है जिसने कि जो आपका मोटर सिस्टम है उस सिस्टम के द्वारा, जो संवेदी तंत्र है हमारा सेंसरी सिस्टम, उसके द्वारा जो है मस्तिष्क को जो एक संदेश भेजा कि यहाँ चोट लगी। मस्तिष्क ने एकदम से क्रमबद्ध किया कि जो चोट लगी है वो प्रायोरिटी है, वो सबसे पहला काम है, तो उसने सबसे पहले हाथ को वहां पहुंचाया ताकि हाथ जो है वो उसे दबा दे, उससे उसको थोड़ा सा रिलीफ, क्योंकि हाथ में गर्मी होती है, हाथ से जब आप उसे दबाएंगे तो थोड़ा सा वहां पे रिलैक्स होगा आपको, तो वो वहां पे इस तरह से आपका जो पूरा प्रक्रिया घटित होती है। जो प्रत्यक्षीकरण है वो साधारण संवेदी गुणों को वस्तु के प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषित करता है, और उस संश्लेषण के आधार पर ही हम पहचान करते हैं। देखिए, जहां तक प्रत्यक्षीकरण की बात है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एक रस्सी जो आपको दिन में सूर्य के प्रकाश में या रोशनी में पड़ी हुई है, तो वो आपको रस्सी ही दिखेगी, मगर वही रस्सी जब अंधेरे में कहीं कोने में पड़ी होगी तो उस रस्सी जैसा और क्या हो सकता है। और क्योंकि अंधेरे में हमें डर लगता है, अंधेरे में सबको डर लगता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमें ज्ञान है कि इस तरह की चीज सांप भी हो सकती है, तो वो रस्सी हमें सांप भी लग सकती है, तो वो परसेप्शन है, रियलिटी नहीं है। परसेप्शन जो होता है, प्रत्यक्षीकरण जो होता है, वो सच भी हो सकता है, सच नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो हमारा सिर्फ बोध होता है, वो हमारा सिर्फ प्रत्यक्षीकरण होता है, वो सिर्फ हमारा परसेप्शन होता है। इट मे बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू, तो वो डिपेंड करता है। कई बार हमारे परसेप्शन जो है वो गलत हो सकते हैं, कई बार हमारी धारणाएं जो है वो गलत हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको रस्सी का एग्जाम्पल दिया। प्रत्यक्षीकरण की अगर हम अवस्थाओं की बात करते हैं, तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनके लिए जो आपका प्रत्यक्षीकरण का जो सबसे मुख्य कार्य है वो ये है कि जो उसका निकटतम उद्दीपन है, जो स्टिमुलस है के आधार पर, जो हम नजदीक से देख रहे हैं उसके आधार पर हम लोग दूर का कुछ भी ज्ञान जो है वो हम लोगों ने अपने आप में बना लेना, मन की कल्पना, जिसे मैंने अभी अभी आपने बताया कि ये बोध है, कल्पना है, हमारा परसेप्शन है, हमारी धारणा है, कल्पना जो है वो सच हो सकती है, सच नहीं हो सकती है। रस्सी रस्सी की जगह हो सकता है कि हम लोग रस्सी को सांप मान रहे हैं, हो सकता है हम सांप को रस्सी मान लें, ठीक है। तो वो कल्पना है, तो उसमें जो है जो भी हमें उद्दीपन दिख रहा है, दिख क्या रहा है हमें क्लियर नहीं है, बस एक रस्सी जैसा कुछ आकार का कुछ वहां पे कोने में दिख रहा है अंधेरे में, रोशनी में तो वो क्लियर होगा कि क्या है। तो उसमें अब ये है कि वो रस्सी भी हो सकती है, ये है कि वो सांप भी हो सकता है। तो उस वक्त की सिचुएशन के आधार पे आप क्या महसूस करते हैं वो आपका प्रत्यक्षीकरण होगा। जहां पे क्रिया की बात आती है तो हमें क्रिया में जो भी भौतिक लक्षण होते हैं, जैसे कि रस्सी हमें सांप क्यों दिखी, क्योंकि सांप भी लंबा होता है, रस्सी भी लंबी होती है, सांप भी टेढ़ा मेढ़ा आपका जो है जब भी वो मूव करता है तो उसका ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, स्ट्रेट नहीं होता है, और रस्सी कहीं भी आपको गिरी हुई मिलेगी तो डेफिनेटली वो भी टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो देखिए उसका शेप और उसका आकार, अगर बहुत वो जो पतली रस्सी गिरी होगी तो डेफिनेटली आपको कहीं भी फील नहीं आएगा कि सांप है, मगर जो सांप के आकार की मोटी रस्सी अगर वहां पड़ी होगी तो डेफिनेटली वी विल फील कि वो होगा। रंग भी इसमें आ सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक जैसी होती हैं और उसके साथ जो हमारा पूर्व अनुभव होता है, क्योंकि हमने सांप को देखा हुआ है कि वो इस तरह का होता है, तो हमारा पूर्व अनुभव, जैसे कि मैं अभी बात करूं आपको कि गोल चीज, तो गोल चीज के परसेप्शन सब मैंने आपको कुछ तो कहा नहीं, चलो अब हम बात करते हैं आगे कि गोल चीज है मगर वो खाने की वस्तु है, वो फल है, तो आपके मन में एकदम से क्या आएगा, संतरा आ सकता है। थोड़ा सा अगर हम शेप को आगे पीछे कर दें, बिल्कुल गोल ना करें, तो सेब भी आ सकता है, ठीक है, खरबूजा आ सकता है। तो ओवल की हम बात करेंगे तो तरबूज आएगा। तो शेप आकार की बात करेंगे तो हमें पता है कि आपका जो सेब है वो ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है। तो ये चीजें जैसे ही हम लोग इन चीजों को देखेंगे, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ एक फ्रूट्स में कंफ्यूजन हो जाती है, आपने नहीं देखा होगा हमारे यहाँ पे संतरा होता है और एक गलगल होता है, एक दड़ुंज होता है, तो लेमन होते हैं जो बड़े बड़े लेमन होते हैं, तो बड़ा सा जो लेमन होता है जिसका बिग साइज होता है वो कहीं ना कहीं गलगल एक फ्रूट होता है उसके साथ रिजेम्बल करता है। तो वहां पे अगर आपके एकदम से देखने में मिलता है तो वहां पे आपका जो पूर्व अनुभव है उसके हिसाब से आपको वहां पे अपना परसेप्शन हो सकता है। कल्पना जो है वो फिर से सही या गलत कुछ भी हो सकती है। अगर हम बात करते हैं प्रक्रिया की, तो प्रक्रिया कैसे होती है, बड़ी सिंपल सी बात है, कोई स्टिमुलस होगा, कोई ना कोई उद्दीपन होगा, उस उद्दीपन को देखते ही एक सेंसरी सिस्टम के द्वारा संवेदी जो आपका सिस्टम है, तंत्र है, उस तंत्र के द्वारा जो है वो चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज की गई और उनका जो कंसिस्टेंसी है, डेप्थ जो है, वो सेंसेशन जो है वो मस्तिष्क तक पहुंचाई गई, वो मस्तिष्क जो है वो उसका जो पार्ट्स है उनका एनालिसिस करता है और आइडेंटिफिकेशन करता है। कभी आपको केला, सेब, अमरूद, तरबूज, खरबूज, अगर सारे फ्रूट रख दिए जाएं तो आपको कैसे पता लगता है कि ये सेब है, ये केला है, ये खरबूजा है, ये तरबूज है, क्योंकि हमारे अपने पूर्व अनुभव हैं, उनके आधार पर हमें पता है कि इस कलर का, इस शेप का जो फ्रूट है वो खरबूजा है, इस कलर का, इस शेप का जो फ्रूट है वो अमरूद है। तो वहां पे वो परसेप्शन हमारे फिक्स हो गए हैं, क्यों, क्योंकि वो बार 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 रिपीट हुए, रेपिटिशंस हुए और वो कल्पनाएं हमारी हर बार सही सिद्ध हुई, तो वो कल्पनाएं जो है वो आपकी वो हमेशा के लिए सही हो गई, तो वो परसेप्शन तो आपके सही बन गए। मगर कुछ परसेप्शंस ऐसे हो सकते हैं जिनका जो है आपके फर्स्ट टाइम हो या सेकंड टाइम हो, तो जिसके आधार पे हमारी जो कल्पना, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि आप किसी अजनबी से मिलते हैं, वो अजनबी आपके साथ सही तरीके से बात नहीं करता है, तो आपके मन में एक परसेप्शन बन जाएगा कि अजनबी जो होते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते हैं, तो अजनबियों से हमें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। वहीं आपके अगर 2-3-4 बार अगर यही रेपिटेशन होने लगा तो डेफिनेटली आपके मन में पक्का परसेप्शन हो जाएगा कि जो अजनबी होते हैं वो चीट ही करते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं। मगर कुछ अजनबी आपके साथ अच्छा बर्ताव करे और कुछ अजनबी आपके साथ बुरा बर्ताव करे, तो जब आप किसी अजनबी से मिलेंगे तो डेफिनेटली आपके माइंड में दोनों परसेप्शंस होंगे, फिर आप उससे जो आपको संवेदनाएं आएंगी, उसके व्यवहार से जो आपको स्टिमुलस मिलेगा, उसके आधार पर आप जो है वो अपना परसेप्शन बनाएंगे कि वो अजनबी अच्छा है या बुरा है। जब हम लोगों के बारे में धारणाएं बनाते हैं तो वो इसी पर आधारित होता है कि हमारा लोगों के साथ जो उठना बैठना है, लोगों के साथ जो हमारी प्रक्रिया है, लोगों के साथ जो हमारी व्यवहार है वो कैसा रहा। तो उसके तजुर्बों के आधार पर जो है वो हम लोग अपना आगे का परसेप्शन से बनाते हैं। प्रत्यक्षीकरण व्यवस्था परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? तो अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में ही पता है कि इट्स ए प्रोसेस जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो प्रत्यक्षीकरण जो है वो एक आपका व्यवस्थित प्रक्रिया है। मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ ये जिगजैग में नहीं हो सकता। पहले आपको स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस के बेस पे आपका जो सेंसरी सिस्टम जो है वो एक जो आपकी संवेगात्मक जो भी आपकी फीलिंग्स है उनको मस्तिष्क तक पहुंचाता है। मस्तिष्क में जाके वो क्रमबद्ध होता है, उसका जो विश्लेषण किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसे एनालिसिस किया जाता है, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती हैं और फिर नॉलेज एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेशन और बिलीफ के बेस पर जो है वो एक निर्णय लिया जाता है। तो दैट इज द प्रत्यक्षीकरण व्यवस्था परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग बात करें प्रत्यक्षीकरण व्यवस्था के सबसे सामान्य रूप को तो उसे आकृति भूमि व्यवस्था भी कहते हैं। आकृति मीन्स फिगर, ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आप लोगों के पास अपनी बुक है तो आप अपनी बुक में पेज नंबर 55 में फिगर नंबर 5.2 देखें। देखिए इसमें एक ही फिगर है मगर हमारे देखने के परसेप्शन के साथ ही इस फिगर का परसेप्शन भी चेंज हो जाएगा। अगर आप व्हाइट पे ब्लैक फिगर को देखते हैं तो ये ऐसे लगता है कि जैसे दो जो है वो आमने सामने उल्ट जाने वाली आकृति हैं और व्हाइट आपकी ग्राउंड है। जबकि आप व्हाइट को जो है आकृति देखें तो ये एक लैंप तक की आकृति आती है और ब्लैक जो है वो आपकी बैकग्राउंड आ जाती है। तो आपने क्या देखा, स्टिमुलस क्या था, उस स्टिमुलस के बेस पे जो आपके संवेदी तंत्र है उसने वहां पे मस्तिष्क को संदेश भेजा और उस संदेश ने जो है वो हमारे शरीर को संदेश भेजा कि ये जो ये चीज है। तो आपने जब व्हाइट पे ब्लैक देखा तो ये आपकी उलट जाने वाली आकृति है, जबकि आपने ब्लैक पे व्हाइट देखा तो ये एक लैंप की आकृति है। दोनों ही विपरीत है, दोनों ही सच भी है मगर दोनों सच नहीं भी हैं। ये देखने के परसेप्शन पर जो है वो आपका डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें जो भी है तो ये इनके कुछ नियम्स होते हैं, लॉज ऑफ परसेप्चुअल ग्रुपिंग, कि किस तरह से हम लोग जो है वो किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में परसेप्शन जो है वो बनाते हैं। तो इसके नियम में सबसे पहले आता है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी समीपता, कि ये किस चीज के समीप है, मतलब कि किस चीज के आसपास जो है वो चीज पहुंचेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अजनबी आपको कुछ अजनबियों के साथ अच्छा एक्सपीरियंसेस है, कुछ अजनबियों के साथ आपके बुरे एक्सपीरियंसेस है। अब आप एक नए अजनबी के सामने हैं, आप उसके जो स्टिमुलस हैं, जो उसकी संवेगात्मक जो भी चीजें हैं, जो उसके स्टिमुलस हैं, उनको आप नोट कर रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जो उसके स्टिमुलस हैं, जो आपके अवलोकन हैं, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, वो जिस कारक के ज्यादा नजदीक होंगी, बैड एक्सपीरियंसेस वालों के साथ ज्यादा होंगी तो आप समझ लेंगे कि ये अजनबी भी बैड है। अगर आपके अच्छे वालों के समीप होंगी तो ये अच्छे माने जाएंगे। तो जो भी कोई है, जो समान कारक है, तो उद्दीपन जो एक दूसरे के निकट होते हैं वो एक समूह में माने जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक स्टोरी में बताऊंगी, पहले हम लोग नियम कर लें फिर उसके बाद। तो देखिए जैसे चार पांच लोग अगर इकट्ठे खड़े हैं और एक आदमी अलग खड़ा है तो हमें क्या पता लगेगा कि वो हमें ग्रुप दिखेगा, वो इंडिविजुअल दिखेगा। तो जो लोग जो चीजें इकट्ठी हैं वो एज ए ग्रुप ही होंगी, उसकी विशेषताएं एक जैसी होंगी। अब जब क्लोज है आपका, प्रॉक्सिमिटी है, तो समानता भी आएगी, सिमिलैरिटी। जो चीजें आकृति में, आकार में या रंग में एक जैसी हैं, वो एक ग्रुप में आती हैं, सिमिलैरिटी, ठीक है ना। अब आप देखिए कि मोबाइल चाहे आपका एंड्रॉयड हो, चाहे एप्पल हो, चाहे बेसिक फोन हो, मगर क्योंकि उसकी जो आपका कार्य विधि है वो सबकी सेम है, तो मोबाइल की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब आकार या रंग की बात करें हम लोग, तो जो आपके एक जैसे आकार के हैं, तो जैसे कि ऑरेंज है, ठीक है, संतरा आपका, तो जैसे ही हमको अगर गोल और संतरे जैसा टॉय आपने देखे होंगे बच्चों के कई बार, तो उन्होंने क्या किया होता है कि बच्चे को संतरे का परसेप्शन क्लियर कराने के लिए बिल्कुल संतरे जैसा प्लास्टिक का वो संतरा बनाया होता है। उसे देख के क्या फीलिंग आती है, संतरा, मगर वो संतरा तो होता नहीं है, ठीक है ना, मगर उसमें कल्पना हमारी संतरे आती है क्योंकि उसकी आकार और उसकी आकृति और उसका रंग जो वो संतरे जैसा होता है, तो वो समान है, एक जैसे नहीं है, समानता मतलब कि एक ही नहीं है मगर एक जैसे हैं। तो वो फ्रूट नहीं है मगर वो फ्रूट के होने का आभास वहां पे देता है। कई तो इतने रियल टॉय होते हैं कि दूर से कहीं ना कहीं ऐसा फील आता है कि सचमुच का ही फ्रूट या पत्ता वहां पे रखा है। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि पत्तों को आप टच करके देखते हैं कि वेदर इट इज रियली रियल वन और आर्टिफिशियल। तो निरंतरता, कंटिन्यूटी, देखिए प्रत्यक्षीकरण का बहुत ही सिंपल सा लॉ है, वो है निरंतरता। निरंतरता का मतलब है कि जो चीज आपकी कंटिन्यूटी में एक जैसी होती रहेंगी। देखिए हमारे पास चित्र 5.3 है और 5.3 में जो आपकी बीच की है जिसमें डॉट्स आपके लगे हुए हैं, तो इन डॉट्स को आपको देखें और हम पूछें कि ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे, ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि ये नो डाउट कि इसके डॉट्स मिले हुए नहीं है, मगर जो इनकी कंटिन्यूटी है उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल है। और वैसे ही रियल लाइफ में भी परसेप्शन इसी तरह से बनते हैं। जो परसेप्शन हमारे लगातार बनते जाते हैं वो ही परसेप्शन जो है वो हमारे थ्रू आउट द लाइफ चलते रहते हैं। क्लोजर, पूर्ति, एक ऐसी प्रवृत्ति है जो अधूरी है लेकिन पूरे रूप में सम रूप आकृति को पूर्ण करती है। मतलब कि वो अधूरी है मगर उससे हमें कहीं ना कहीं परसेप्शन जो मिल जाता है कि वो किस चीज के बारे में है। जैसे मैंने अभी आपको ट्रायंगल का एग्जांपल दिया, ठीक है ना, अगर आपको सेब की 1/4 भी दिखेगा तो आपको एकदम से परसेप्शन मिल जाएगा ना कि ये सेब का 1/4 पार्ट है, उसी का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रत्यक्षीकरण है वो लगातार होता रहा है और हम लोगों ने देखा है कि ऐसा सेब होता है और सेब कटने के बाद इस तरह से दिखता है। तो पूर्ति है समान क्षेत्र, समान क्षेत्र की मतलब है आपका कॉमन रीजन। उद्युपन में जो एक समान क्षेत्र में पाए जाते हैं वो एक समूह की भांति दिखाई पड़ते हैं। जैसे हमने सिमिलैरिटी की बात करी, जैसे हमने प्रॉक्सिमिटी की बात करें, वैसे ही कॉमन रीजन जो सब एक ही गुण में आते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हम सेब, केला, अंगूर, ऑरेंज, ये सब चीजों को फ्रूट कहते हैं, फल कहते हैं, क्योंकि वो एक ही रीजन में आते हैं, उन्हें हम लोग बिना पकाए खाते हैं, तो वो फल की श्रेणी में आते हैं, कुछ अनाज की श्रेणी में आते हैं। तो ये तो हमारे प्रत्यक्षीकरण, क्योंकि हम डेली इनको इतना यूज करते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं क्लियर समझ में आ रहे होंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो सिचुएशनल होते हैं, एकदम से होते हैं और कभी कभी होते हैं। उनके जो परसेप्शंस होते हैं वो इंडिविजुअल के जो तजुर्बे होते हैं, उनका जो अपना बोध होता है, उनकी जो अपनी जानकारी होती है, उनका जो अपना ज्ञान होता है, उनके आधार पर जो है वो प्रत्यक्ष करण वहां पे बनता है। उसके आधार पर वहां पे धारणाएं बनती हैं, उन्हीं के आधार पर वहां पे प्रत्यक्षीकरण बनता है। इसमें अगर हम लोग अगले नियम की बात करें तो अगला नियम है आपका प्रत्यक्ष स्थिरता। प्रत्यक्ष स्थिरता परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी वस्तु की आकृति, आकार या चमक का प्रत्यक्षीकरण समान रहने पर भी रेटिना पर बनी प्रतिमा बदल जाती है। ये एग्जाम्पल है कि कई बार क्या होता है कि आपकी चीजें सेम है मगर रेटिना पे जो है उसका रिफ्लेक्शन अलग हो जाता है। इसी तरह से अलग अलग जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनके भी आपका जो है वो चेंजेस होते हैं, परंतु दृष्टि से हम लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, इसलिए उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। बुक में एग्जाम्पल इसी का दिया हुआ है। तो यदि वस्तु का दिखने वाला आकार समान रहता है और वो रेटिना पर चेंज हो जाए, या फिर वो आकृति स्थिर रहती है और रेटिना की आकृति बदल जाए, दोनों ही स्थितियों में जो आपका प्रत्यक्ष स्थिरता है इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि जैसा है वो आपकी वस्तु जो जैसी है वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी में कि किसी भी चीज के बारे में जब आप कोई परसेप्शन बना लेते हैं, कोई बोध बना लेते हैं, तो वो स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और डेप्थ परसेप्शन का मतलब है गहराई का प्रत्यक्षीकरण। ये हमारा अगला नियम है। अगले नियम में हम लोग बात करते हैं कि ये जो है आपका त्रिविमीय स्थान और यथार्थ दूरियों के निर्णय की क्षमता है। जब हम डेप्थ की बात कर रहे हैं तो देखिए ये सब परसेप्शन है। हम यहाँ खड़े होके कोई चीज कितनी दूर है, या मैं ये बात करूं कि मेरे घर से ऑफिस को जाने के लिए रोज आती हूं तो मुझे बहुत क्लियर है कि मुझे कितना समय लगेगा। मान लो मेरी ट्रांसफर हो जाती है और मैं किसी दूसरे ऑफिस में जाने लगूंगी, तो पहले दिन मैं अपने जानकारी, अपने बोध, अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे सबसे पहले ये कैलकुलेशंस करूंगी कि वहां जाने के लिए मुझे कितना समय लगेगा। तो जो आपके जो भी चीजें हैं उनके बारे में गहराई में जो देखना है उसके बारे में हम लोग जो है वातावरण और शरीर से दूरी और स्थान की मिली सूचना से मिले लक्षण है। तो जो संकेत है जो उसको देखने के लिए आप समझने गए, तो आप अगर कोई मान लो कि एक आंख से उन्हें अच्छा सा नहीं दिखता है या सही से नहीं दिखता है या नहीं दिखता है बिल्कुल भी, और एक आंख से देख रहे हैं, तो आप एक आंख से देखने वाले और दो आंख से देखने वाला का जब परसेप्शन देखेंगे तो दोनों की गहराई में असर फर्क होगा कि दो आंखों वाले दोनों तरफ जो है अपने उनका विजन जो है वो ज्यादा होगा, जबकि एक आंख वाले जिस तरफ को उनकी आंख खराब है उस तरफ को उनका विजन जो है वो कम होगा, वो कम गहराई तक देख पाते हैं। यहाँ पे जब गहराई की बात करें तो ये सिर्फ परसेप्शन है, कल्पना है, ये सच हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। तो देखिए चित्र 5.4 में जो है वो यही बात करी है तीन शक्तिशाली भ्रम की, और ये तो हम लोग इन जनरल भी देखते हैं। आप अगर स्ट्रेट कोई सीधी सड़क हो और सीधी सड़क पे एक जगह खड़े हो जाएं और आप पूरी सड़क को ध्यान से देखें तो सड़क आपके अगर बिल्कुल सीधी है, समानांतर है, तो एक आपको धीरे धीरे सड़क जो है वो छोटी होती दिखाई देगी, मतलब उसकी चौड़ाई जो है वो कम होती दिखाई देगी और एक पॉइंट पे आपको वो बिंदु के स्थान जैसे दिखाई देगी, जबकि सड़क तो सड़क है, वो जैसे आप चलते जाएंगे तो वो आपको वैसे ही चौड़ी सड़क दिखती जाएगी, मगर एक जगह स्थिर होने पे ऐसा भान होता है, ऐसा भ्रम होता है कि वो जो है वो कहीं जाके वो आपस में मिल जाएंगी। आपकी ट्रेन की पटरियों के साथ भी ऐसा होता है, आप ट्रेन की पटरी के बीच में खड़े होकर देखें तो आपको बड़ी दूर जाके ऐसे दोनों वो पटरियां आपस में मिलती हुई दिखाई देती हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, सिर्फ भ्रम है। तो यहाँ पे देखिए चित्र 5.4 में अ ब स तीन हमारे पास पिक्चर्स हैं। तो जो अ है वो मुलर लायर भ्रम के नाम से जाना जाता है, जिसमें देखिए ऊपर की जो रेखा है वो आपको लंबी दिख रही होगी एज कंपेरिजन टू नीचे की रेखा से, जबकि ये दोनों ये सिर्फ भ्रम की स्थिति है, दोनों की लंबाई बराबर है। इसी तरह से जो चित्र ब है उसको हम लोग जो है पोजो भ्रम के नाम से जानते हैं, जिसमें समतल रेखाएं हैं मगर कुछ जो है वो अधिक लंबी दिख रही हैं, जबकि दोनों रेखाएं समान हैं, तो वो भी आपका भ्रम है। तीसरी जो है वो समतल लंबत भ्रम कहते हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल इल्यूजन, और इस इल्यूजन में आपको क्या फील आ रहा है कि जो वर्टिकल लाइन है वो लंबी है एज कंपेरिजन टू हॉरिजेंटल लाइन, जबकि अगर आप इसे स्केल से मेजर करेंगे तो दोनों लाइनें फिर से सेम दिखा होंगी। तो ये भ्रम जो है वो विद्यमान उद्दीपन का विकृत प्रतीक्षीकरण है, मैंने कहा आपको ये कल्पना है, कोरी कल्पना, और ये कल्पनाएं सम हाउ कभी सच हो सकती हैं, कभी सच नहीं भी हो सकती हैं, परंतु ये भ्रम जो है वो सिर्फ विद्यमान उद्दीपन का एक विकृत प्रतिकर्षण होता है। इसे हम मति भ्रम भी कहते हैं। मति भ्रम की जैसे आपको ने कभी कभी उसका रेगिस्तान में जो है वो आपने ये सुना होगा कि आपको कभी कभी पानी का जो एकदम से भ्रम हो जाना कि वहां पानी है, जबकि वहां पे सूर्य की रोशनी इस तरह से घिर रही होती है तो ऐसा लगता है कि वहां पानी है, मगर वहां पे जब पहुंचते हैं तो वहां पे पानी नहीं होता है। तो वो भी एक भ्रम की स्थिति है। जब भ्रम की स्थिति मति भ्रम होना, मतलब जिसमें आपका स्टिमुलस के द्वारा इस तरह से फील आना कि ऐसा है मगर वहां पे ऐसा होता नहीं है। ये तो आपका प्रत्यक्षीकरण के बारे में है, जो हम लोग सीखते हैं, जानते हैं, जो हमारे अनुभव होते हैं उनके आधार पर जो आने वाली स्थिति होती है, उस स्थिति के बारे में बोध रखना, उस स्थिति के बारे में ज्ञान रख अपनी परिकल्पना करना या उसकी कल्पना करना, उसे हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। परंतु ये सब चीजें कितनी, मैंने कहा कि आपका जो परसेप्शन है वो सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और आपका जो ये सही हो या गलत हो तो ये किस पे डिपेंड रहता है? अब ध्यान, अटेंशन पर। जितनी ज्यादा आपकी अटेंशन होगी उतने ज्यादा परसेप्शंस आपके सही निकलेंगे, उतनी ज्यादा आपको जानकारी जो है वो सही होगी। क्यों? क्योंकि अब ध्यान, अटेंशन इज द बेसिक नीड एंड बेसिक की फॉर द नॉलेज। जितना आपका ध्यान होगा उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग जो है वो परसेप्शन होगा। अब देखिए, कई बार आपको भी, आप साइकिल चलाते होंगे या हो सकता है स्कूटी चलाते हो, तो उस केस में आपके पेरेंट्स जो है वो आपको कई बार हिदायत देते होंगे कि सावधानी से चलना, ध्यान से चलना। ध्यान से चलने का उनका क्या मतलब है? कि जब साइकिल चलाओ तो साइकिल और सड़क पे ध्यान रखना, यहाँ वहां बात मत करना। जब आपके पेरेंट्स गाड़ी चलाते हैं तो आप उनसे भी यही अपेक्षा रखते हैं कि वो गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात ना करें, किसी से बात ना करें या कोई और कार्य ना करें। जैसे कि कई लोग खाना खाने लगते हैं या जो है टेक्स्ट करने लगते हैं, तो इस तरह की कोई बात ना करें। क्यों? क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है वो एक समय में एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। तो उसमें जो है, जब हम लोग मल्टीटास्क में घुसेंगे तो वहां पे हमारा फोकस जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, तो हमारा किसी एक चीज पे ध्यान सही से नहीं होगा। और अगर हम गाड़ी चलाते वक्त, उस वक्त प्रायोरिटी क्या है? गाड़ी, सावधानी, ताकि सड़क पर ना तो हमें कोई नुकसान हो ना ही हमारी वजह से किसी और को नुकसान हो, मतलब किसी भी तरह की दुर्घटना वहां पे ना हो। तो वहां पे जो है ध्यान किस चीज पे दिया जाता है? कि आप जो है वो ध्यान से गाड़ी चलाएं ताकि दुर्घटनाएं ना हो। तो उस जो हमारा डाइवर्ट हो जाता है उसे हम कहते हैं विभाजित अवधान। आपका जो है मतलब कि डिवाइड हो जाना, दो चीजों पे आप फोकस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अगर एक काम कर रहे हैं वो भी गलत हो जाएगा और दूसरा आप जो कर रहे हैं वो गलत हो सकता है, आपके दोनों भी गलत हो सकते हैं। तो उस केस में आपको जो है वो सिलेक्टिव अटेंशन, चयनित अवधान, चयनित अवधान वह प्रक्रिया है जिसमें हम आने वाली संवेदी सूचना को प्राथमिकता देते हैं। कौन सी? जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हमें देखिए, फोन आ रहा है, फोन सुनना जरूरी है, और गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाना जरूरी है। तो चयनित सिलेक्टिव अटेंशन में हमें यह ध्यान रखना है कि कौन सा ज्यादा जरूरी है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे जो है आपका उस पे ध्यान करेंगे कि अगर हमें फोन ज्यादा जरूरी है तो हम लोग साइड में गाड़ी रोक के फोन सुन लें, और अगर हमें फोन ज्यादा जरूरी नहीं है तो हम गाड़ी पे ध्यान रख के गाड़ी को चलाते रहें। तो इसमें जो तीन संभावित क्रियाएं हैं वो है आपकी एक संवेदी पात्र, छन्नी जैसा, एक अनुक्रिया चयन, और तीसरा है चेतना के एक द्वार जैसा। अब अवधान के निर्धारक जो है वो भौतिक कारक, प्रेरक और अवधान दो होते हैं। जब हम डिटरमिनेंट्स ऑफ अटेंशन की बात करें तो भौतिक कारक में आपके फिजिकल फैक्टर्स हैं। फिजिकल फैक्टर्स मीन जैसे कितना हम किसी चीज को रिपीट करते हैं, दोहराना, सहज, अंतर, आकृति, आकार और चमक। तो देखिए, कई बार ये सब चीजें हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको बड़े जो बड़ी सुंदर सी किसी ने एड लगा रखी होगी साइड में, अगर हमारे रोड के साइड में, तो हमारा ध्यान वहां चला जाता है। रोड के साइड में कोई अच्छी सी बिल्डिंग है, कोई मेला लग रहा है, तो हमारा ध्यान उस तरफ को खींचा चला जाता है, क्योंकि ये फिजिकल फैक्टर है जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी तरह से प्रेरक और अवधान है, आपके मोटिव्स एंड अटेंशन। जो भी हमारे प्रेरक है वो हमारे प्रत्यक्षीकरण को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे, किसी को नहीं चाहिए तो वो खेल पे ज्यादा ध्यान देगा, ठीक है ना। और अगर हम एडवर्टाइजमेंट में देखें तो एडवर्टाइजमेंट में देखिए एग्जाम्पल बुक में भी लिखा है कि दो चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है, एक एग्जाइटी और एक आपके सेक्स को। मतलब कि एक तो आपका जो हम लोगों को अपनी सिक्योरिटी को लेके हम चिंतित होते हैं, तो बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है हमारी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के साथ, ताकि हम उन पे फोकस करें, क्योंकि वो चीज जो है वो हमारे को अटेंशन लेती है। सिमिलरली कई बार जो होता है वो सेक्स अट्रैक्शन होता है, तो कई चीजें ऐसी हैं जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट है आपके वो इसी बेस पर, इन्हीं चीजों के आधार पर जो है वो अपनी ऐड करते हैं, ताकि वो जो कंज्यूमर है उसका ध्यान अपनी तरफ जो है वो आकर्षित कर सके। यहाँ पे अगर हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की बात करें तो देखिए अति इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी योग्यता है जिसमें वस्तुओं और घटनाओं का इस प्रकार प्रत्यक्षीकरण करता है कि जिन्हें ज्ञात संवेदी क्षमताएं विस्तार से नहीं बता सकती। मतलब कि हमारी जो सेंसेस है, फाइव सेंसेस हमने बात करी थी, फाइव सेंसेस की एक लिमिट है, हम उस लिमिट में ही जो है वो प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। मगर आपने सुना होगा सिक्स सेंस, कि कुछ लोगों में सिक्स सेंस होती है, और जो सिक्स सेंस है दैट इज नोन एज द एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जो वो बताती है जो हमारी जो है वो ज्ञात, जो हमारी फाइव सेंसेस है वो नहीं बता पाती। जो परामनोविज्ञान है वो अतीन्द्रिय प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन करता है, और इसके बारे में कई फैक्ट्स भी मिले हैं कि ये होता है। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक जो है वो पूरी तरह से विश्वास करते हैं, जबकि कुछ लोग नहीं करते हैं। मगर ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। हर एक इंसान में सिक्स सेंस नहीं होती, हर एक इंसान जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन फील नहीं करता, इवन सम लोग तो जो हमारी फाइव सेंसेस हैं उनको भी नहीं पूरी तरह से फील कर पाते, बट वो एक्सेप्शनल्स होते हैं। सिमिलरली एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन भी सब में नहीं होता है, वो भी एक्सेप्शनल्स होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ और यहाँ बैठे बैठे मुझे ये महसूस होना कि मेरी सिस्टर, मेरे पापा, मेरी मदर घर में बेचैन है या बीमार है, और एकदम से उनके साथ कॉन्टेक्ट होना, तो इस तरह के जो परसेप्शंस होते हैं उन्हें हम लोग एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस कहते हैं। दैनिक जीवन में प्रत्यक्षीकरण का क्या प्रयोग है? देखिए इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग है हमारा दैनिक जीवन में, क्योंकि हम लोग जो हमारे अनुभव हैं उनके आधार पर अगर हम लोग अवधान रखें, अटेंशन रखें, तो आने वाले खतरों से हम लोग बच सकते हैं, या फिर आने वाली जो भी हमारी चीजें हैं हम उनको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण है एक आने वाली जो स्थिति है उसका एक पूर्वाभास या पूर्व कल्पना या पूर्व अनुमान लगा लेना, जो कि बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं प्रयोग की, तो उन्होंने सबसे पहले आई विटनेस की बात करी है कि चक्षु साक्षी की, और हम खुद जानते हैं कि जब कोर्ट कचहरी की बात होती है तो आई विटनेस की कितनी पहुंच होती है। मगर ये देखा गया है कि अगर जो आई विटनेस है वो पूरी तरह से अटेंशन में नहीं था तो वहां पे एरर होने के चांसेस है। इसलिए ध्यान रखने योग्य ये बात है कि जब भी कोई आदमी आई विटनेस है, जो भी वो देख रहा है, जो भी उसने परसेप्शन बनाया, उस परसेप्शन को कहीं ना कहीं वेरीफाई कर लिया जाए कि वेदर इट वॉज लाइक दैट, वैसा ही था या कुछ और अलग से तो नहीं था, तो उस चीज में वो वहां पे वेरिफिकेशन होना चाहिए। और ये प्रत्यक्ष जागरूकता और सकारात्मक मनोविज्ञान है, परसेप्चुअल अवेयरनेस एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी है, जिसमें जो है रचनात्मक व्यक्ति बार बार आने वाले अध्यपनों पर ही ध्यान देता है। और जो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि जो हम रिपीट हो रहे हैं, अब जैसे कई बार लोग गाड़ी चलाते हैं तो वो एक उनकी रूटीन होती है, तो वो रूटीन में गाड़ी चला रहे होते हैं, उनका वो जो है एक उस बाकी चीजों पे ध्यान नहीं होता है, तो उनके आस पड़ोस में क्या हो रहा है, आसपास में क्या है, तो वो चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो जब भी कोई भी काम करे तो वो सिर्फ जो आपका रेपिटेशन है उस उद्दीपन पर आधारित ना हो के वो बाकी चीजों पर भी ध्यान वो अपना जो है ध्यान दे, और ध्यान देने के जो मूल्य है, वैल्यू पेइंग अटेंशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रत्यक्षीकरण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो है वो अटेंशन जो है वो पूरी तरह से हो, 100% अटेंशन। क्योंकि जितना ध्यान से हम चीजों को देखेंगे उतना क्लियर हम लोग उसे समझ पाएंगे, जितना क्लियर हम स्टिमुलस को समझेंगे संवेदी तंत्र उतना ही क्लियर मस्तिष्क को जो है वो संदेश देगा, मस्तिष्क उस संदेश को उतने ही क्लियर तरीके से क्रमबद्ध करके जो है वो परसेप्शन बना के हमें जो है भेजेगा। वहां पे जैसे कोई गलती हुई वैसे ही हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा। हम लोग इसे कंक्लूड करेंगे एक स्टोरी के साथ। आपने सुना होगा कि 5 अंधे दोस्त थे, तो उन्हें जब हाथी दिखाने की बात करी तो उन्हें हाथी के पास लेके गया गया, तो क्योंकि हाथी इतना बड़ा था कि किसी एक में तो हाथ में सबा नहीं सकता था। तो उस केस में क्या है कि उन्होंने किसी ने जैसे उसके टांग पकड़ ली, किसी ने पूंछ पकड़ ली, किसी ने कान पकड़ लिए, किसी ने सूंड पकड़ ली। तो जितना सबका बोध था, जिसने टांग पकड़ी उसको लगा कि हाथी पिलर जैसा होता है, जिसने पूंछ पकड़ी उसको लगा हाथी रस्सी जैसा होता है, जिसने कान पकड़े उसको लगा हाथी छत जैसा होता है। तो वो उनके जो परसेप्शन थे, क्योंकि उन्होंने अटेंशन पूरी नहीं दी थी, तो उनकी अटेंशन की कमी की वजह से उनका जो परसेप्शन था वो वहां पे गलत हो गया। तो वहां पे अपने परसेप्शन की सही परसेप्शन हो, सही परिकल्पना हो, उसके लिए जरूरी है कि आप अटेंशन दें और अटेंशन के साथ ही अपने सारे कार्य करें। धन्यवाद।